अगर आप खुश नहीं हैं, आप परेशान हैं, आपके सर में दर्द रहती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो चेक कीजिए कि कहीं आपके अंदर तजस्सुस की आदत तो नहीं। क्योंकि आप देखिए, ये जो हिस्सा होता है ना, ये जिसको हम कनपट्टी कहते हैं, इसके ऊपर बोझ आता है हर वक्त। यदि ऐसे पल 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 हो रहा है, दैट मीन कि आप हर वक्त किसी के बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त कुछ सोच रहे हैं, शुभात है। और आपका दिल क्या करता है कि कुछ ना कुछ मुझे जरूर मिले, मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। फिर इसी तरह से आप देखिए कि वो एक वाक्या है, मिर्ज़ा गालिब के नाम से मारूफ किया जाता है तो लतीफ सी बात, लेकिन अमल की बात बहुत प्यारी है। किसी ने उनको आकर कहा कि मिर्ज़ा गालिब, आपको पता है कि आपके हमसाए ने आज खीर पकाई है? तो कहने लगे, फिर मुझे क्या? कहने लगा, नहीं, मुझे पता चला है, वो आपको भी भेजेगा। तो कहने लगे, फिर तुझे क्या? फिर तुझे क्या? मुझे क्या और तुझे क्या? सीधी सी बात है, आप और मैं हमेशा अपने मामले में रहे। फिर आप याद रखिएगा कि जिंदगी के अंदर खुशी आ जाएगी आपकी, आप मुतमईन होंगे। हमारी जिंदगी इन बेकार कामों के लिए, खुद को कहें कि क्या मेरा नसीब यही है, मेरी चॉइस यही है, मैं इतनी बदबख्त हूं कि मैं हर वक्त बुरी चीजें ढूंढती रहूं और अच्छी चीजों को छोड़ दूं। तो आप देखेंगे कि आपका अखलाक बुलंद होगा। और एक मेयार अपने लिए बना लें, क्या मैं ये पसंद करती हूं कि लोग मेरे बारे में तजस्सुस करें, क्या मैं चाहती हूं कि लोग मेरे हालात को जानें? तो फिर मैं नहीं पसंद करती तो कोई दूसरा कैसे पसंद करेगा? और यकीन करें कि जब आप इन चीजों के ऊपर अपने आप को लाएंगे ना, उसके बाद वाकई आपको बहुत वक्त मिलेगा। आज मुझे मुमी तौर पर इस चीज का शिकवा है अपने हम माहौल से, अपने हालात से, कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। कोई नहीं पता किस वक्त मेहमान आ जाए, तैयार रखो, जैसे दुश्मन के आने के लिए असलहा तैयार रखते हैं, इसलिए लोग घरों में तैयारी करके बैठे होते हैं। कोई नहीं पता किस वक्त कौन आपको बुला ले, यानी हम इस वक्त पूरा अपना जो सर्कल देखे ना जिंदगी का, तो दीन की तरफ आने, और खास तौर पे मैं कहती हूँ कुरान की क्लासेस में जब सिस्टर्स को बुलाया जाता है, उनके उसमें ना आने की बहुत बड़ी वजह हमारी ये अखलाकी खराबियां भी हैं। एक बंदे को कोई फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, अपना काम किया, उठाया अपना बस्ता, आके बैठ गया, अल्लाह का कुरान सीखा, इसमें तजस्सुस करें। सूरत मायदा में क्या है, सूरत निसा में क्या है, सूरत आले इमरान में क्या है, सूरत बकरा में क्या है, क्या कभी हमें ये तजस्सुस नहीं आता? यानी आप जो मैं बात कहने लगी ना, ये बड़े गौर से सुनने की है। अभी तक तो यही कह रहे हैं तजस्सुस नहीं करना, तजस्सुस नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हो गई। क्या कभी आपको मुझे ये तजस्सुस नहीं हुआ कि ये कुरान कैसे दिलों को बदलता है? यकीन करें, मैं अपनी बात बताऊंगी आपको, जिस चीज ने मुझे कुरान को समझ के तर्जमे के साथ पढ़ने पे माइल किया था, वो यही वजह थी। हमारी जिंदगी में चंद ऐसे लोग आए, इर्द गिर्द मिलने वाले दोस्तों में और रिश्तेदारों में एकदम सडन चेंज आया था उनकी जिंदगी में, अपसाइड डाउन हो गया। अल्ट्रा मॉड स्लीवलेस उस दौर में पहनने वाले जो थे, उन्होंने अपने आप को पर्दों में छुपा लिया। बड़े बड़े फैसले हुए जिंदगी के। तो मुझे आज भी याद आता है वो अपने जहन का सवाल कि आखिर इनको किस चीज़ ने बदला, आखिर इनको क्या चीज़ चेंज करने पे माइल करती है। तो फिर पता चला कि, और सबकी कॉमन चीज़ एक ही एंड पे निकली कि बस इन्होंने कुरान तर्जमे से पढ़ा। हिफ्ज़ करने से कुछ नहीं होता, याद रखिए, अल्लाह हिफ्ज़ को संभालने की तौफीक दे दे। हाँ, हिफ्ज़ एक नूरुन अला नूर है, चिराग है, वो कहना चाहिए कि माथे का ताज है, अगर साथ उसके तर्जमा समझ आ रहा है। तो जब गौर किया कि कुरान पढ़, तो फिर मेरे जहन में ये सवाल उठता था, आखिर क्या है इस कुरान में, क्या है? मैं खुद पूछा करती थी खुद से। जैसे आप देखें ना, साइंस की बुक उठाई तो पता है साइंस है, इक्वेशंस हैं उसमें, न्यूमेरिकल्स हैं उसमें, चांद की बातें, जमीन की बातें, सूरज की बातें, साइंस तो यही होती है ना। केमिस्ट्री खोलेंगे तो उसमें फार्मूले हैं, फिजिक्स खोलेंगे तो उसमें बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, हमें पता चलता है। हिस्ट्री की बुक खोलेंगे तो हिस्ट्री, आखिर इस कुरान में क्या है? समझ नहीं आता, पढ़ते थे समझ नहीं आता, और जब पढ़ा फिर समझ आया कि इससे खूबसूरत चीज़ नहीं है जिसमें तजस्सुस किया जाए। गौर करें, आज जाए बैठे गौर करें, कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, ये तजस्सुस रखे कि 114 सूरतों में क्या पढ़ा हुआ है। फिल्मों का तजस्सुस, ड्रामों का तजस्सुस, अगली किस्त में क्या होगा इसका तजस्सुस, हीरो हीरोइन मिल जाएंगे या अब्बा आ जाएंगे रास्ते में, ये तजस्सुस, पूरी लव स्टोरी चलती है हमारी तजस्सुस की बुनियाद पे, अपने उस तजस्सुस को कन्वर्ट करें। एक तजस्सुस हमारे कल्चर में बहुत आम है, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स न्यू, हमारी जुबान में कहते हैं आजकल क्या चल रहा है, क्या नई चीज़ आई है, क्या फैशन है। अच्छा, जब भी मैं आती हूँ ना, फिर लोग मुझे सुनाते हैं ये चल रहा है, मैं कहती मुझे तो चलता हुआ नहीं दिख रहा, ये तो खड़ा हुआ है, ये आजकल लंबी कमीजें चल रही हैं। वो कमीजें नहीं चल रही होती, पहन के लोग चल रहे होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इन, आजकल क्या इन है। बस लोग सिर्फ इसलिए शॉपिंग करते हैं कि देखें कि क्या नया, ये भी तजस्सुस है। अच्छा जी, क्या चीज़ नहीं आई है? अच्छा, कुछ लोग नई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तजस्सुस के नाम पे, और कुछ सेल वाली ढूंढ रहे होते हैं, सेल किधर लगी है। इत्तफाक हुआ मुझे इसी ट्रिप में एक जगह एक साथी के साथ कहीं जाने का, तो बहुत ब्रांड नेम है जुनेद जमशेद नाम, आपको पता ही होगा, नाम उनका इसलिए ले रही हूँ कि उनकी बात जहन में आ रही है। इधर वहाँ हम थोड़ी देर खड़े हुए, बिलीव में ऐसे लग रहा था उस दुकान के अंदर के जैसे कोई मुफ्त बट रहा है, और एक एक औरत ने अपनी बाजू पे कोई 10-10 जोड़े उठा उठा के फिर के काउंटरों के आगे खड़ी थी। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगी सेल लगी, और सारे स्टोर में सेल 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 के साइन लगे थे। तो मैं वहाँ खड़ी जो थोड़ी देर रही, ये सोचती रही इस नाम वाला खुद किधर है। अब ये दुकान किसकी है, कौन है, मुझे आपको इससे कोई गरज नहीं, लेकिन जिस नाम पे लोग आए हैं वो इस वक्त नाम किधर है? अगर उसने अपनी जिंदगी नेकी में ना लगाई होती तो आज उसके पीछे क्या था? हम अच्छा गुमान कर सकते हैं हर जाने वाले से कि उसकी वहां ये कपड़ों के बिकना और इसकी इन्वेंट्रीज और इस पूरे दिन की सेल की रिकॉर्ड नहीं उसको बचाएगा, उसको वो बचाएगा जो वो लेके जा चुका। लेकिन हम इबरत नहीं लेते हैं, हम किसी की अचानक मौत से भी इबरत नहीं लेते हैं। ये सोचने की बात है। आपके मेरे लिए ये चीज़ इतनी अहम है अपने अंदाज से कि हमेशा सोचें कि मैं अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाऊं। अपने से वादा कीजिए, देखिए आप तो 99% मुस्लिम मुल्क हैं। मैं हैरान होती हूँ, अपना मुल्क हमारा, मुसलमान मुल्क हमारा, प्यारा हमारा मुल्क, इसमें ना कोई किसी का कंट्रोल है, ना इधर पर्दे पे बैन है, ना इधर दाढ़ी वालों को जॉब नहीं मिलती, कोई पाबंदी तो नहीं है ना आप पे मेरे पे। फिर क्यों इस्लाम पे अमल नहीं हो रहा? फिर औरतें खुले मुंह बाजारों में कैसे फिरती हैं? फिर मर्दों के चेहरे दाढ़ी से बेन्याज क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ये कुरान, ये किताब उनकी जिंदगी से दूर कर दी गई है। अपने बच्चों को सादा नाजरा पढ़ाने के साथ साथ उनको कुरान का शौक दिलाएं। जो सबक भी वो कारी साहब से या जो भी उनको पढ़ाते हैं उनसे पढ़ते हैं, आप उसका बैठ के उनके साथ तर्जुमा शेयर करें, उनको शौक दिलाएं, बेटा देखो इसमें ये है, बेटा इसमें ये है। तजस्सुस करना है तो इस पे कीजिए कि अल्लाह के नबी ने ये दीन कैसे फैलाया। सीरत पढ़ें, इसमें तजस्सुस करें। तजस्सुस करना है तो इस बात का करें कि आपके मक्का के 13 साल कैसे गुजरे, और आपकी मदीना की 10 साल जिंदगी में कितने बड़े बड़े मार के आए, इसका तजस्सुस कीजिए। और वल्लाही अगर तजस्सुस करना है तो बेहतरीन तजस्सुस इल्म का तजस्सुस है। अबू हुरैरा अपनी जगह से उठा नहीं करते थे, अल्लाह के नबी के पास जब आके बैठते तो सिर्फ इसलिए उठ के ना जाते कुछ रोटी पानी कमाने खाने के, कहीं मैं उठ के गया और अल्लाह के नबी ने कोई बात कह दी और मैं सुनने से रह गया। हालांकि बाद में दूसरों से पूछ सकता हूँ, पर मुझे ये तजस्सुस है कि मेरे बाद अल्लाह के नबी ने क्या कहा। आज की क्लास में ना गई तो पता नहीं वहाँ की बातों का क्या होगा। ये शौक पैदा करें। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में शादी नहीं की अबू हुरैरा ने, क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि कहीं बीवी बच्चों के घर बार के मामलात में पढ़कर मैं अपने आप को अल्लाह के नबी के इल्म से महरूम ना कर लूँ। तो तजस्सुस में अपने आप को डालकर मुख्तलिफ चीज़ों में ले जाना ये नापसंदीदा बात है। फिर आप देखिए कि एक बहुत बुरा तजस्सुस है हमारे कल्चर में, इंतहा से बुरा। जो लोग बुरा काम करते होंगे वो तो करते होंगे, हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हमारा एक बड़ा तजस्सुस है, और वो कह के कौन सा हुक्मरान क्या खा गया, वो कौन सा टुकड़ा ज़मीन का हजम कर गया, वो कौन से एसेट्स खा गया, किधर किसने कौन सी हमारी मुल्क के खजाने लूट ली है, कि नहीं है तजस्सुस? मर्दों को कहीं भी आप दावतों में या किसी गैदरिंग्स में देखें तो अमूमन उनकी बातें हुक्मरानों के बारे में होती हैं। याद रखिए ये पसंदीदा नहीं है, ये नापसंदीदा बात है। वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, जिसने करना है खुद भुगतना है, मुझे आपको क्या लगे, आपका मेरा ये किरदार नहीं। और दुख कब होता है? जब हमारा बच्चा बच्चा सियासतदानों के जोक्स और उनके लतीफे आगे करता है। मैं सोचती हूँ ये बच्चे किस मिजाज के साथ पल रहे हैं, और ये आगे बढ़ेंगे तो कल दुनिया में क्या काम करेंगे। हाँ ये करिए कि इनको दीन कैसे सिखाया जाए, खुद को मसरूफ करें। और याद रखिए तजस्सुस वो करता है जिसके पास वक्त बहुत होता है, और वक्त उसके पास होता है जिसके पास कोई मकसद नहीं है। बेकार जिंदगी, कभी तो बैठ के सोचे ना कि मैं क्यों जी रही हूँ, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, जब मैं खत्म होंगी तो मेरी क्या चीज छुटेगी। यानी आपने आपसे पूछे जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी तो किसको फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे बच्चों को फर्क पड़ेगा, बहल जाएंगे, यकीन करें महीनों में बहल जाते हैं। पहले लोग सालों में भी नहीं भूलते थे, अब महीनों में बहल जाते हैं। आप कहते शौहर को फर्क पड़ेगा, चंद दिन में बदल जाएंगे, चंद दिन में उन सोच उनकी बदलेगी, क्योंकि दुनिया की जरूरतें उनको अपना घर चलाना है वो चलाएंगे। एक चीज जो आपको पीछे से फायदा देगी वो आपका इस दुनिया में किया हुआ काम है। ढूंढना है तो तजस्सुस करें उन लोगों का जिनके घर में रोटी नहीं है और आप उनको जाके पहुंचाएं, जो हैंड टू मौत है, जिनको कुरान कहता है कि तुम उनके सवाल ना करने की वजह से गनी समझते हो लेकिन असल में वो बेचारे दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनको ढूंढिए, जिंदगी का कोई मकसद है, तजस्सुस करना है तो नेकी के मौके का तजस्सुस करें। मेरी इस साल की क्या नेकी, अब देखे चंद दिन पहले 2017 शुरू हुआ है, एक दो महीना पहले मुहर्रम का महीना भी गुजर गया। हम नए साल के आगाज में आज से ही चले, जो गुजर गया सो गुजर गया। फरवरी की आज 4 तारीख है, 2017 है, आज से शुरू कीजिए एक नई जिंदगी। मैं कुछ करूंगी, मैंने जाया नहीं होना, मैंने माजी में नहीं झांकना, मैंने मुस्तकबिल में देखना, मैंने कुछ करके दुनिया से जाना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेकार चीजों का तो वक्त ही नहीं रहेगा। और देखिए तजस्सुस के साथ पहली चीज क्या थी, बदगुमानी, बदगुमान हुए तजस्सुस शुरू कर दिया, उसका तजस्सुस के साथ ही फरमा दिया वला यख्तब बादुकुम बादा, तुम में से बाज की गीबत ना करें। ये अगला स्टेप होता है, पहले किसी के बारे में आपका दिल बुरा हुआ, आपने किसी बच्चे को ही लगा दिया, जाओ तजस्सुस करो, तजस्सुस के बाद बैठ के मुंह जोड़ के गीबतें शुरू हो गए। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतन, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। खुद ही अल्लाह ने फरमा दिया फकरिहतुमूहु, तुम इसको ना पसंद करोगे, तो क्या करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, क्योंकि इन्नल्लाह तव्वाबु रहीम, अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। गीबत क्या होती है, ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि टॉपिक हमारा तजस्सुस का था, लेकिन आयत को पूरा करना, और मेरा ख्याल है कि गीबत पे बात करना हम सबके फायदे की बात है। अपने भाई की बात उसके पीठ पीछे इस तरह करना, या वो बात उसकी करनी जो उसके मुंह पे करे तो उसको बुरी लगे। रिवायत है, आपने बहुत दफा सुनी होगी, साहबा कहते हैं कि बात उनमें है, का तभी तो ये गीबत है, अगर वो बात ना हो उसमें तो ये तो बुहतान होता, और बुहतान के आपको पता कितनी सजा है, अगर किसी पे जिना का बुहतान लगा दिया तो 80 कोड़े हैं, जिना करने वाले को 100 कोड़े और जिना की तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े, आप खुद देखिए 20 कोड़ों का फर्क रह गया सिर्फ। इसलिए अपनी जुबानों को काबू में रखना है, बहुत सोचिए, बहुत सोचिए, किसी के बारे में कोई बात करते हुए 10 दफा सोचे फिर बोलें, क्योंकि अलगीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, हदीस में आता है गीबत ज़िना से भी बदतरीन है। समझ नहीं आता कैसे, पूछा किसी ने कि गीबत और ज़िना, ज़िना तो बहुत बुरा समझते हैं और गीबत इट्स ओके, कहा कि ज़िना क्या है, दो लोगों के बीच में दो लोग बिगड़ेंगे ना, दो का बिगाड़ है, गीबतें करते से पूरी सोसाइटी पे फसाद फैलता है, बाद जब गीबतों से घर नहीं टूट जाते, खानदान नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से भाई बहन दूर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मुख्तात रहना चाहिए। एक रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन कोई शख्स होगा तो अपनी नेकियां ढूंढता फिरेगा, किसी से पूछेगा मैंने फलां नेकी की थी, कहाँ की थी, वो की थी, तो किधर है, मिल नहीं रही, तो फरिश्ते उसको जवाब देंगे तेरी वो नेकियां उन गीबतों की वजह से सब बातिल कर दी गई जो कि तू करता था। ये है मुफलिस, इन न मुफलिसों में उम्मत ही, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा क्यामत के दिन, बड़ी नमाजें रोजों के साथ आएगा लेकिन एक शख्स आएगा जिसको इसने गाली दी थी, वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे बदला दिलाइए, अब बदले में वहां क्या रह जाएगा, रुपये डॉलर पाउंड क्रोन सब खत्म, उसकी नेकियां पकड़ के उसको दे दी जाएंगी, वो खुशी खुशी चला जाएगा। और एक और शख्स आएगा उसका मुकदमा है, इसने मेरी गीबत की थी, इसने मुझे ताना दिया, लोग आते जाएंगे कद शतम, किसी ने गाली दी, हत्ता कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, और लोग अभी भी आ रहे हैं, अब क्या किया जाए, का आने वालों के गुनाह इस पे डाल दो, अब आने वालों के गुनाह इस पे डाल दो। आपने फरमाया वही शख्स जो थोड़ी देर पहले नेकियों के ढेर के पास खड़ा था, अब उसके पास गुनाहों का ढेर पड़ा है और उसको धकेल दिया जाएगा जहन्नुम की आग में। ये है उम्मत का मुफलिस, तो कोई अपनी नमाज और रोज़ों पे मान ना करे, कोई दीन की तबलीग करने पे मान ना करे, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अगर हम अल्लाह के रास्तों में खर्च कर रहे हैं तो मान ना कीजिए, मान करना है तो इस बात का कीजिए कि अल्लाह हमें दूसरों से बेनियाज कर दे। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम साहबक में से कुछ के साथ जा रहे थे, तो उन्हीं दिनों माइस नाम के एक शख्स थे जिनको जिना के सिलसिले में रजम की सजा दी गई थी, तो आपने राह चाहते शख्स को दूसरे से ये बात कहते सुन लिया कि देखो देखो अल्लाह ने इस बंदे का पर्दा ढांक दिया था और इसके नफ्स ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, यानी अपना जुर्म आके खुद ही सामने खोल दिया, इकरारे जुर्म कर लिया, कुत्ते की मौत मारा गया, नौजुबिल्ला। अल्लाह के नबी उनकी बात सुन के खामोश थे। थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ एक गधे की लाश सड़ी पड़ी थी। आप रुक गए, दोनों को बुलाया और फरमाया कि उतरिए और इसकी लाश को खाइए। कहने लगे अल्लाह के नबी इसे कौन खाएगा? तो अब जरा आपका जरा जुमला सुनिएगा जो आपने फरमाया। आपने फरमाया कि अभी अभी आप लोग अपने भाई की इज्जत पर जो बातें कर रहे थे वो इस गधे की लाश से ज्यादा बुरी थी। खा सकता कोई गोश्त गधे का या मुर्दा भाई का? जरूरत है बहुत ज्यादा एहतियात करने की। और याद रखिए अबू दाऊद की रिवायत है कि बदतरीन ज्यादती किसी मुसलमान की इज्जत पर नाहक हमला करना है। सोचिए कि मुझे क्या मिलेगा किसी की बेइज्जती करके, पूछिए खुद से मुझे क्या मिलेगा। बस दफा हमारे नफ्स की एक खुजली होती है, क्या होगा क्या होगा। अपने आप को बेनियाज करें, कोई किसी को पसंद ना करे। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां डायरेक्ट आपका ताल्लुक, आप रिश्ता कर रहे हैं, कोई आपसे पूछता है बताएं भी फलां का बेटा है उसका रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है, मुझे बताएं वो कैसे लोग हैं। फिर हकायक को सामने रखते हुए बगैर बढ़ाए और बगैर घटाए आप बता सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप बीमारी अपनी बता सकते हैं, वकील के पास जाते हैं अपनी लड़ाई बता सकते हैं। वजह तो होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि जिस बंदे के सामने बात करें वो आपका मसला हल कर सके। अब ये सहेलियों का बैठ के कानों में बातें करना और बहनों का बातें करना और माँ बेटी का बैठ के बातें करना, याद रखिए ये बहुत बुरी बात है। ये कहाँ तक इंसान को लेगा कि इंसान उस दिन अफसोस करेगा कि काश मैंने ये सब कुछ ना किया होता। लेकिन जो आखिरी बात थी वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के रोज़ बदतरीन मुकाम उस शख्स का होगा जिसकी बदजुबानी से डर के लोग उससे मिलना छोड़ दें। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो अपने आप से पूछिए कहीं लोग मुझसे अवॉइड तो नहीं करते, रियली ऐसे लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द? छोड़ो उसको क्या मिलना, छोड़ेंगे फिर कोई नई बात सुन के आ जाएंगे ना, भाई नहीं उन तक मिल गए तो पता नहीं क्या क्या बातें हमारी आगे चली जाएंगी। तो ये चीज़ इंसान के लिए बहुत खतरे की है। बस दफा गीबत आप करते नहीं, आपको सुननी पड़ती है, फिर क्या करें आप? तो फिर यह है कि मिले ही कम। समझ आ रही है ना बात की?
तो अगर फोन कर लें तो
जी फोन करें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फोन करें आप उनको एक अच्छी सी नसीहत कर दें। देखिए टेलीफोन जिसने इजाद किया था वल्लाही उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये गीबतों के लिए प्रमोट होगा। टेलीफोन इसलिए था कि भाई ये पहुंच गए आ गए, खैरियत से हैं, किधर हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये एक ज़रूरत की चीज़ है। हमारे कल्चर में खास तौर पे हर चीज़ का मिसयूज़ होता है। जैसे फ्रीज़र जिसने इजाद किया था उसने ये सोच के किया था कि जो चीज़ें बच जाती हैं वो फिके ना, ज़ाया ना हो। उस गरीब को क्या पता था कि लोगों ने पहले फ्रीज करनी है चीज़ें और फिर खानी है। आप देखिए कि इनका बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल है, इसलिए इसका जवाब देती हूँ कि फिर करें क्या ना। हम तजस्सुस कर सकते हैं, ना हम गीबत कर सकते हैं, ना हम किसी के बारे में बदगुमानियां कर सकते हैं, तो फिर हम करें क्या, सवाल है ना। देखिए दिमाग जो होता है ना, दिल दिमाग, ये वो सोर्स है जहां से लफ्ज़ निकलते हैं। ठीक है, बातें करें, क्यों नहीं करें, अच्छी बातें करें, प्रैक्टिकल बातें करें, नेगेटिव बातें नहीं हो, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। अपने लिए ये क्राइटेरियन बना ले। मैं अपना बता देती हूँ, मैंने कभी जब तक खुद अपने बारे में कुछ ना कि मैंने नहीं कभी पूछा। कोई जितनी बात पूछे मैं उतनी बताती हूँ। बीसियों सैकड़ों लोग अपना मशवरा करते हैं, कर लिया आपने मुझसे मशवरा, मुझे आप उसके महीना बाद मिले, 6 माह बाद मिले, मैं नहीं पूछूंगी। वाय कि बताने का होगा तो ये खुद बता देंगी। वजह किसी का इशू चल रहा होता है, किसी की काउंसलिंग है, बाद में वो मिलता है, मैं खुद से नहीं पूछूंगी सुनाया अब क्या हाल है। वजह क्या है कि इससे बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा मैं ये सोचती हूँ कि जब इन्होंने मेरे से ये मशवरा किया था तो उस वक्त उनका दिल था बात करने की, हो सकता है वो मेरे से नहीं बात करना चाह रही। रिश्ता होता है, कोई कहता है रिश्ता दिखाएं, रिश्ता करें, दिखा दिया, उसके बाद वो मिलता है, अब मैं नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ, बात हुई की हुई, या मैं बीच में पढ़ पढ़ के करूँ। वजह क्या कि फिर बातें शुरू हो जाती हैं। आप ये किया करें ऐसे मौक़ों पे जब शादियों पे जाते हैं, हर शादी पे जाने से पहले कोई एक अच्छा सा गोल बना लें। मिसाल है कि जहाँ आप बैठी होंगी, ज़ाहिर है तकरीबन 6 से 8 चेयर्स तो होती हैं ना राउंड टेबल पे, और हम अमूमन जाके एक जगह पे बैठ जाते हैं। आज मैंने अपने इर्द गिर्द वालों को एक छोटा सा कोई मैसेज दे के आना है। मौका ढूंढ लें, हालात ढूंढ लें, डायरेक्ट तनकीद का वो वक्त नहीं होता। आप स्लीवलेस शर्ट्स पे वहाँ बात नहीं कर सकते, आपको वहाँ जाके म्यूजिक पे बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई तज़किया की बात, तरबिया की बात, अल्लाह के नाम की बात, अस्माउल हुस्ना की बात, यानी कोई इतना साइलेंट सा मैसेज। अच्छा लोग क्या कहते हैं कि ये कोई बातें करने का मौका है, तो ये किसने बनाया? हमने बनाया ना। मसलन जैसे अभी हम परसों एक शादी में गए हुए थे, तो सिस्टर्स बिल्कुल अलग थी, ब्रदर्स अलग थे, और माइक पे दोनों तरफ पूरी आवाज़ थी, और उन्होंने एक किसी भी स्पीकर थे जो निकाह पढ़ा रहे थे, उनका दर्स किया हुआ था, तो हम जाके खामोशी से सुनने लग गए। तो मुझे फील हुआ कि हमारे कल्चर में ये चीज़ बहुत कम है। अच्छा लगा मुझे। अमेरिका में
जी
जाइए, हर शादी के मौके पे उन्होंने एक बेस्ट स्पीकर को बुलाया था। अगर 2.5 घंटे का टाइम आपको वो दे के बुला रहे हैं ना, तो पूरा उन्होंने प्लान आउट किया होता है, शुरू में लोगों को बुलाना, फिर बिठाना, फिर घर में से एक बंदा, फिर एंटरटेन। हमारी तो यहाँ शादियों में यकीन करें, माइंड ना कीजिएगा, ऐसे लग रहा होता हम खाने का इंतजार कर रहे हैं, और खाना खुल गया, फिर उसके बाद हम खुल जाते हैं। आप 2 घंटे ना, आप बल्कि जैसे आपके घरों में शादी है किसी के भी आजकल में, प्लान करें, प्लान आउट करें। कैसे करेंगे? अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए सुनाने लगी हूँ। हमारे पिछले दिनों हमारी सिस्टर्स हैं, तो उनके घरों में डेथ हुई, भाई की सडन डेथ हो गई, पाकिस्तान में आई हुई थी। तो बाद में फिर जब गई तो कहने लगी कि उस्ताजा वहाँ तो सारा सारा दिन लोग आते रहते हैं, और फिर एक बंदे को घर के बैठना भी पड़ता है, और हमारे आदत है लोगों की कि सुबह उठ के अगले दिन नहा धो के आके बैठते हैं, फिर दोपहर का भी खाना, तो समझ नहीं आती करें क्या। बस जैसे मुराद ये था कि अब अगर हम मिलके कुरान भी ना पढ़ें, या लोग गुठलियाँ पढ़ते हैं वो भी ना पढ़ें, तो क्या करें? तो मैंने उन्हें कहा, देखिए, और अल्लाह ये काम हमसे ले ले, हम ये करें तो हमें खुशी होनी चाहिए। मैंने कहा कि क्यों ना हम ऐसे प्लानर्स बनाएं। देखिए, मौत वाला घर सबसे ज्यादा दीन को, इस्लाम की बात को जज्ब करने वाला घर होता है, दुख सुख चढ़ा होता है ना। मैंने उन्हें कहा कि हम 3 दिन का पैकेज बनाते हैं, अपने पास लेक्चर्स का एक पूरा स्लॉट, एक शॉर्ट कोर्स करते हैं, चीजें मौजूद है, सिर्फ उसको गैदर करना है। पहली चीज, जैसे मसलन कि हम में से हर एक के पास मैयत की बख्शिश की दुआओं का कार्ड या उसका कोई हैंड आउट होना चाहिए। पहले से घर में तैयार करके 10, 15, 20 कॉपियां रखें। जब कभी किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, या अल्लाह ना करे हमारे घरों में ऐसी होती बात, जो आ रहा है उसके हाथ में वो दुआओं का होल्डर दे दें, वो बैठ के अपने तौर पे दुआएं पढ़ते रहें। फिर उसके बाद वहाँ बैठ के कोई सिस्टर ऐसी हैं आप लोगों में जिनको आता है, उनके साथ 20-25 मिनट की छोटी सी बात के देखें, कल ये कहाँ थी, आज किधर हैं, कहाँ जा रही हैं, मरने वाले पे बात करें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया। फिर मैंने उन्हें कहा कि जब जनाजा ले जाते हैं तो फिर आप 1.5 घंटे का वक्फा दे दें, क्योंकि उसमें मोस्टली लोग खाते हैं, पीते हैं, जगे हैं। उसके बाद अब लोग तो आएंगे और जाएंगे, आप घर वाले क्या करें? एक ड्राइंग रूम मुख्तस करें, तो आप अनाउंस कर दें कि आज 2 बजे से 4 बजे, मिसाल दे रही हूँ जो नाम मुझे याद है, और मैं मर गया लेक्चर हम सुनेंगे। लोगों को भी पता है, जो आए हुए उनको मौका दें कि वो अंदर आके बैठें, इस तरह तो बैठेंगे भी नहीं है। फिर उसके बाद आप एक लेक्चर सुना लेते हैं, फिर उसके बाद आप कोई नशीद है, अगर मौत की याद जिसमें आती है, म्यूजिक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कब्र याद आती है, वो प्ले कर लें। फिर जी असर की नमाज पढ़ेंगे, असर की नमाज भी हो गई, एक लेक्चर आपने जोहर से असर के बीच में सुन लिया छोटा सा, उस पर कोई एक बंदा डिस्कशन कर ले। हर शहर, हर इलाके में यकीन करें, बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स होती हैं जिनकी तजवीद बड़ी अच्छी होती है, अनाउंस कर दें कि असर की नमाज से लेकर मगरिब के बीच में 1 घंटा हम यहाँ बैठ के दुआएं सीखेंगे। कोई एक सिस्टर, आप खुद बैठ जाएं, कोई दुआओं की बुक ले लें, कुरान की ले लें, या कनस्तीन ले लें, जो आपके पास बुक है फ़ैनी करीब है लेके, तो आप लोगों को दुआएं सिखाएं। अब पहला दिन पूरा हो गया, यानी 3 स्लॉट ज़रूर करें, जोहर से असर के बीच में, फिर 2-2.5 घंटे का गैप दे दें, फिर असर से मगरब के बीच में, और मगरब और इशा के बीच में आप नमाज का तरीका सिखा दें। पूरा एक दिन का प्लानर, और जो लोग आए उनको कहें कि कल हम क्या करेंगे, अगले दिन का प्लानर हो। मतलब हम उसमें मैयत का सफ़रे आखरत सुनेंगे, कि जनाजे के मसाइल बुक की कोई बात सुन लें। यकीन करें, 10 दिन भी अगर लोग आपके घर बैठे हैं, आप 10 दिन का कोर्स करवा दें। हमारे पास पूरा दावा मटेरियल हो, जिसको नहीं आना होगा ना वो आएगा भी नहीं, और फालतू बातें खत्म होंगी। सेम थिंग, सेम थिंग हम शादियों में कर सकते हैं। इतना कुछ है इस पे, तो इतना कुछ है कि मैं कहती हूँ कि अगर सिर्फ हम अपने घंटों को एंटरटेन करना चाहे अच्छा रखें। अमेरिका में जब शादियां लोग अरेंज करते हैं, यूथ है, पूरी पूरी स्क्रीन्स लगाते हैं, यदि उनका तरीका कार क्या है, मसलन जैसे जिसकी शादी है उसकी बचपन से लेके जवानी तक की सारी तस्वीरें जमा की वो दिखाते हैं, पढ़ा ऐसा लग रहा गया था, कोई आका है मामू आया तो उसका जोक सुना गया, फूफो आई तो कहीं इसका नाक बहता था, फुलां वो तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें सुनाने लग जाते हैं ना। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो उसकी बातें, फिर उसके बाद ना एक बंदा पूरा माइक होल्ड करता है, फिर वो कहता है चले जी लड़के की अम्मी को बुलाते हैं, वो अपनी फीलिंग शेयर करें, फिर लड़के की माँ आ रही है, यानी लोगों को मसरूफ रखे, मजा आता है। अब ये तो मुंह उठा के बैठे हुए बैठे हैं और बोर हो, बाद में कहते हैं थक गए हैं, इतनी देर से खाना मिला, ये तो शुक्र है अल्लाह भला करे जिन्होंने पाबंदी लगा के 10 बजे तक शादियों को कर दिया और वन डिश पे कर दिया केक। लेकिन वो अलग बात है, हम वन डिश वो पुलाव के अंदर बोटियां घुसेड़ के, कहीं फिश घिसाड़ के और कहीं कबाब करके कहते हैं ये वन ही, क्योंकि हमने एक ही डिश में रखा हुआ सब कुछ। लेकिन बहरहाल ये है कि इसके ऊपर हमें अपनी उम्मत को वक्त का सही इस्तेमाल दिखाने की जरूरत है, ठीक है। तो फालतू बातें लोग आपसे करेंगे नहीं, आप आगे से जवाब ना दें, जवाब ऐसा दे रहे हैं कि अगला आपसे तीसरा सवाल ना पूछे, ये हम खुद होते हैं जो बात खींचते हैं। आप एक तो क्या हाल है, ठीक है, आपका क्या हाल है, फिर और सुनाओ और सुन, नहीं क्या अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक हूँ, खत्म। आप आगे से ना पूछे आपका क्या हाल है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए मेरे हाल काफी है।